अगला बाप देखिए, बाप मिनल ईमानी एं युहिब्ब ली अखीही मा युहिब्ब ली नफ्सिही। ईमान की अलामत है कि हम अपने भाई के लिए वही पसंद करें जो कि अपने लिए पसंद करता है। बड़ी सख्त हदीस है, यकीन करें अमल में इतनी मुश्किल है सोच भी नहीं सकते। आइए पहले हदीस को पढ़ के थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انس کون تھے 10 سال کی عمر میں یہ بچہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے ایک ماں کی بہترین قربانی کہ اپنے بچے کو دین کے لیے مختص کرنا اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو سب لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو ویلکم کہیں آپ کے होस्ट बनना चाहते थे किसी ने घर खोल दिया तो किसी ने चीजें लाके रख दी तो उम्मे सुलेम अपने 10 साल के बेटे को लेके आ गई कि अल्लाह के नबी आप इसको अपना खिदमतगार बना ले ये आपकी खिदमत करेगा आपके लिए पानी रखेगा। और वाकई हजरत अनस ने फिर 10 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक की उम्र जो पाई उसमें अल्लाह के नबी की दुआओं का हिस्सा था। जब दुनिया से गए तो इनके 100 से करीब इनके बेटों पोतों नवासों में हाफिज कुरान थे। लंबी उम्र भी मिली और अल्लाह ने इनको सहाबा में से कहते हैं कि सहाबियत की जो कड़ी है ना वो अनस पे खत्म हुई। हजरत अनस सबसे आखिरी सहाबी गिने जाते हैं जो दुनिया से गए और उसके बाद फिर ताबईन का दौर आ गया। तो गोया कि ये नेकियों की दुआएं लगती हैं। हमेशा अपने बच्चों को नेक लोगों की दुआएं दिलवाया करें, खिदमत का जज्बा दें। हमारे यहाँ आज लिए दिए रहते सलाम भी को कर ले तो बड़ी बात है, कंधे उचकाते हैं, बात तो उनको समझ किसी की नहीं आती। लेकिन ये एक हमारे असलाफ का तरसे अमल था कि माँ बाप अपने बच्चों से इस्लाम और दीन की खिदमत करते थे और करवाते थे। तो अनस रजी अल्लाह अन्हों ने फिर अल्लाह के नबी से बहुत सारी दुआएं ली। मतन के अल्फाज देखते हैं, काला ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। अब आप देखिए, हम इसको देख लें तो मुझे ऐसे लगता है कि इखलाकियात यानी मैनरिज्म की जो रूट है ना वो ये हदीस है। यानी इस एक हदीस को अगर हम बुनियाद बना लें तो हमारा इखलाक दुरुस्त हो सकता है। इंसान को चाहिए कि हमेशा दूसरों का खैर ख्वाह रहे। आप देखिए, अब इसमें हमने कहा ना जो दूसरे को पसंद आता है वो करो। अब इस पे थोड़े से शुबे हैं, उसको भी दूर करते हैं। अमूमन हम सोचते हैं इससे मुराद कपड़े हैं, जो जोड़ा तुमको पसंद है वो दूसरे को भी दे दो, जो खाना तुम्हें पसंद है वो भी। ये भी एक हिस्सा है लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता। बाज़ दफ़ा जो सूट आपको नहीं अच्छा लग रहा किसी दूसरे को बहुत पसंद आ सकता है, आप उनको दे दें। बाज़ दफ़ा आपको कोई गिफ्ट में ऐसी चीज़ देता है, मिसाल है कोई आपको देता है बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स हैं, गहरे रंग हैं। अब आपकी आदत नहीं, आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आप नहीं पहनते। आप अपनी दोस्तों में साथियों में ऐसे ही मिलने जुलने वालों में सोचते हैं कि फुला अक्सर ऐसे प्रिंट्स पहनती है, मौका देखे ना देखे उनको अच्छी तरह से वो गिफ्ट दे दे, वो खुश हो देंगी, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वरना तो हम बहुत सारी चीजें जाया कर दें जो हमें नहीं पसंद होती। इससे मुराद है रवैये, बिहेवियर। जो बिहेवियर तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते वो तुम दूसरों के साथ ना करो। क्या इंसान अपने लिए पसंद नहीं करता? नंबर एक, कोई उसको तकलीफ दे, फिर कोई उसकी गीबत करे, कोई चुगली करे, कोई उसके खिलाफ किसी को करे, किसी इंसान को लट डाउन करे, उसकी कोई छुपी हुई बात बताए, किसी का राज बताए। आप यहां भी एक छोटा सा होमवर्क लें, लिखिए वो कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने बारे में नहीं पसंद करती। कमोबेश सबकी एक ही होंगी क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। कुछ लोग बड़े ओपन होते हैं, वो बुरा नहीं मनाते लोग उनकी बातें ओपनली कर दें, उनके राज अफशां कर दें, उनकी खामियां खोल दें। बहुत थोड़े लोग होते हैं, अमूमन लोगों को नहीं पसंद आता। आप लिखिए मुझे कौन सी चीजें अपने बारे में पसंद नहीं। उसके बाद अगला मुश्किल सवाल, मुहास्बा, इसमें से क्या क्या फिर मैं दूसरों के साथ करती हूं। आप देखते जाएंगे आपका दिल खुलता जाएगा। और आज से एक आदत बना लें, किसी के साथ कोई रवैया इख्तियार करते हुए, बात करते हुए, उसका जिक्र कहीं करते हुए एक लम्हे के लिए सोचें, स्विच कर लें, बस खुद को ले आए उस पर और अपने आप को उधर कर दें। यानी रिसीविंग एंड पे खुद को ले जाएं तो आप देखेंगे बहुत बेहतर होगा। और जाहिरी बात है ये हम हदीस की किताब अपने तजकिए के लिए पढ़ रहे हैं। ये हदीसें आपने तफसीर में कई बार सुनी होंगी, لیکن اب کیوں پڑھنا ہے؟ میں نے خود کو چینج کرنا ہے. حدیث پڑھنے سے تزکیہ ہوتا ہے, تو کریں, اپنے پیئرز کے ساتھ اس کی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو کہیں کہ اچھا کبھی ایسا کرنے لگوں تو پلیز مجھے بتا دو. باقی چیزیں دنیا کی ضرورت کی ہیں, گھر کے ملازم ہیں, کھانا آپ ان کو دے دیتے ہیں کوئی ایسا جو آپ ایک دفعہ کھا چکے. ہمیشہ سوچیں, دیکھیں میں نے اس پہ ایک معیار رکھا ہوا ہے اپنے لیے بھی, جو چیز میں دوسرے کو دوں گی اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں تو پھر دے دیں, اس کو اچھا نہیں لگے گا تو پھر بری بات ہے. پھٹا ہوا کپڑا آپ دے رہے ہیں, سی کے دے دیں, چلو کوئی بات نہیں, سلا ہوا پہن لے گا. کھانا دے رہے ہیں, سونگ لیں, کہیں خراب تو نہیں ہے نا. باقی اس میں 100% وہ کہ آپ کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ فرق ہے. آپ پیور سلک پہنتے ہیں, آپ کو اچھی لگتی ہے, اللہ نے آپ کو دیا پیسے, آپ پہن لیں. اب آپ 5,000 کا جوڑا پیور سلک کا لے کے پہنتے ہیں, ماسی کو بھی یہی لے دیں, اگلے دن وہ دھو کے آئے گی تو وہ ایسے کچومر بنا ہوگا, تو اس 5,000 کے جوڑے کی قیمت نہیں پہچانی نا. پھر آپ کو کیا چاہیے کہ اس کو موٹا اچھا جو زیادہ دیر چلنے والا ہو, 5,000 نہیں تو 500 کا یا کچھ اس قابل تو ہو کہ وہ پہن سکے وہ دے دیں, ورنہ وہ کہے گی باجی نے پتہ نہیں اتنا سستا جوڑا دے دیا, ایک دھلائی میں خراب ہو گیا. تو ہمیشہ انسانوں کو بھی دیکھیں کہ کون کہاں رہتے ہیں, ان کی بیچاروں کی ضرورتیں دیکھیں. ہم تو 10 دفعہ بھی پہن لیں اور دھوئیں نہ کوئی بات نہیں, نہ میں پسینہ آنا نہ اوپر کچھ گرنا, ان بیچاریوں نے سارا دن کام کرنا, ان کے اوپر ان کو بہت سارے اسٹینس بھی لگ سکتے ہیں. تو ہمیشہ انسانوں کو ان کے مطابق ڈیل کریں, انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس ایک حدیث کو آپ چاہیں تو اپنے لیے موٹو بنا لیں, بلکہ کتاب الایمان جو ہم پڑھیں ایمانیات, اس میں سے اس حدیث کو اپنے لیے ایک موٹو بنا لیں, کسی بھی طرح اس کو یاد کر لیں. چلیے ایک چھوٹا سا کام اور ہے, جب تک یہ باب چلتا رہے گا تب تک یہ ہوم ورک ڈیو کر لیں, اس حدیث کو یاد کر لیں عربی ٹیکسٹ کے اندر, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو یہ کہلوا بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے جو چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی یہ ہمارے اپنے کردار کے ساتھ تھی, اور اس کردار میں خود کو ڈھالنا یہ ایک انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. جب یہ چھوٹی چھوٹی برکس ملتی جائیں گی نا تو پرسنالٹی خوبصورت ہو جائے گی. ہوتا پتہ کیا, ہم بالکل لوگوس کی طرح ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگوس ملتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک تصویر مکمل ہوتی ہے. یہ جو ہماری شخصیت ہے نا یہ ایسے نہیں بنتی, اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی تہیں لگتی ہیں, اور انہی تہوں کے خوبصورت کرنے کا نام کردار سازی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں کردار کی پختگی عطا فرمائے. اگلی حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں, باب حب الرسول من الایمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے. اللہ اکبر. اب آپ حدیث کے جو باب ہے نا اس میں لفظوں کا فرق بھی دیکھیں, کہیں اسلام کی بنیاد, کہیں اسلام کی خصلت, اور یہاں جز. جز کیا ہوتا ہے؟ پارٹ, سم, سم آف دیٹ, یعنی اجزاء سے لفظ جز ہے. یعنی نبی کی محبت کا جز اگر نکل جائے تو ایمان پھیکا ہو جائے گا, ایمان پورا نہیں ہوگا. حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیا؟ فوالذی نفسی بیدیہ, مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے بات کا, اور اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے. دو کمزوریاں انسان کی, پہلی کمزوری والدین ہوتے ہیں, کب تک؟ جب تک اپنے بچے نہ ہوں. یا آپ خود بچے ہیں, کسی بچے سے پوچھے اس کو اپنے ماں باپ دنیا کے بہترین انسان لگیں گے, محبت بھی ہوتی فطری بھی ہوتی, جیسے بھی ہو, گورے ہیں, کالے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نہیں ہیں, فطری محبت ہے. پھر آہستہ آہستہ اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے محبت ہونے لگتی ہے. اچھا, اب یہاں دونوں کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو پہلے کس کی بات ہے؟ والدی ہی, اور پھر اس کے بعد ولدی ہی. ترتیب ہے نا کہ بچپن سے پہلے ماں باپ سے پیار تھا, بچوں سے ہو گیا. اب کیا ہوا؟ پہلی بات یہ کہ ماں باپ تو سب کے ہی ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا میں ان کے بڑے ہونے تک ہوں کہ نہ ہوں, لیکن بچے سب کے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ تو ہیں, ان کی محبت بھی ہے, बस दफा औलाद होती कोई नहीं तो उसकी मोहब्बत कहां से होगी। तो फिर क्या बाकी बचता है? दुनिया के बाकी लोग। अगली हदीस इसके साथ पढ़ के इकट्ठा इस पे हम बात करेंगे। अन अनस रजी अल्लाह अनहु, हजरत अनस रजी अल्लाह अनहु ने भी इस हदीस को क्या किया? अल हदीसु बि ऐनी ही, यानी बिल्कुल ऐन इसी तरह ये हदीस बयान की जैसी हमने पढ़ी। बस व ज्याद फी आखिरी ही, बस ज्यादा किया उसके आखिर में क्या? व नासी अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत। यानी जो हजरत अनस से रिवायत है ना, ये तो अबू हुरैरा की थी, तो हजरत अनस की हदीस बिल्कुल ऊपर आ ली है, सिर्फ उसमें आगे दो लफ्ज ज्यादा है, वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत की बात कर दी गई। तो गोया के अब ये एक है क्राइटेरियन मेरे और आपके लिए। बड़ा सख्त है, खुद से पूछिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत है जो अपने माँ बाप से? मेरे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे तो मुझे अच्छा लगता है, तो अल्लाह के नबी के बारे में कोई गलत सलत बात करते तो मुझे कैसा लगता है? कोई मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर दे तो क्या मैं खुश होती हूँ? तो क्या अल्लाह के नबी की बात, गलत बात सुनकर मैं रहती हूँ? देखिए ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे एक सांचा दे दिया, इस सांचे में खुद को फिट कर लोगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। हर एक अपने आप को चेक करे, क्या हकीकत में मैं अपने आप को अल्लाह के नबी की मोहब्बत से चूर पाती हूँ? और मोहब्बत और ताजीम में फर्क होता है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि दिल में हुक उठती है, जिसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों से हम समझते हैं। मसलन मैं आपको मिस कर रही थी, आई मिस, तो पूछिए क्या मैं नबी सल्लम को मिस करती हूँ? मैं आपको मिलना चाहती हूँ तो क्या मैं नबी सल्लम से मिलना चाहती हूँ? मैं थोड़ा सा वक्त आपकी कंपनी में गुजारना चाहती हूँ तो क्या अल्लाह के नबी की कंपनी में गुजारना चाहती हूँ? इस तरह के छोटे छोटे सवाल खुद से पूछा करें और फिर आपको पता चलेगा। और वह हदीस आपने बहुत दफा सुनी होगी हजरत उमर वाली, कहा अल्लाह के नबी आप मुझे सबसे प्यारे हैं बस अपनी जान से नहीं। कहा उमर तेरा ईमान पूरा ही नहीं है जब तक कि मैं तुझे तेरी जान से भी ना प्यारा हो जाऊं। और रिवायत में था कि अल्लाह के नबी ने आपके सीने पे हाथ रखा तो उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी अब तो मुझे आप अपनी जान से भी प्यारे। हमारी तरह झूठे दावे नहीं थे कि तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ दूं और पता नहीं क्या कर दूं और वक्त आए तो कुछ भी ना करो। सहाबा बिल्कुल सच्चे थे। तो चलिए अपना मुहासबा करते हैं, क्या हकीकत में अल्लाह के नबी की मोहब्बत मेरे दिल में है? इसको खुद से भी अपने ऊपर तारी करना होता है। मैं इस चीज में बिल्कुल ओपनली आपको बताऊंगी कि इवन कुरान भी पढ़ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह शऊर का सफर शुरू हो गया, कुरान से भी ताल्लुक था, लेकिन अल्लाह के नबी से वो खिंच नहीं महसूस होती थी जिसको मोहब्बत के। ताजीम बड़ी, बुजुर्ग बहुत, इज्जत बहुत, वही जो एक ऊपर ऊपर का रस्मी ताल्लुक होता है, लेकिन वो जिसको कहना चाहिए ना आई लव यू वाली कैफियत नहीं लगती थी। और ये मुझे सबसे पहले कब महसूस हुई? जब मैंने अरही को मखदूम पढ़ी, और जब मैंने उसको पढ़ा तो वाकई मुझे लगा कि अल्लाह के नबी मेरे कुछ लगते हैं। फिर उसके बाद आपका बचपन जवानी ऐसे लगता है जैसे यंग लोगों से जो मोहब्बत होती है, फिर आपका जो नबूवत का आगाज का दौर था तो ऐसे लगता है जैसे चचा और मामू उस करीब के दौर के, और जब अल्लाह के नबी के जिंदगी के आखिरी दौर पढ़े तो ऐसे लगता है जैसे दादा बाप बुजुर्गों वाली मोहब्बत। मैंने फील किया कि सीरत पढ़ने के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एंगल बिल्कुल बदलने लगता है। तो आप भी इस पे कोशिश करें, अगर नहीं फील होती तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, शऊर जो नहीं था अब शऊर से काम कीजिए, प्यार करें, खुद सीखें। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह दो बुक्स हमने पढ़ी थी तफहीमु सुन्ना सीरीज में, एक पढ़ी थी हुब्बे रसूल के तकाजे, कुछ इस तरह की उसका नाम है, आप देख सकते हैं उस बुक में। नबी सल्लम के हकूक है, हकूक रहमतुल आलमीन एक किताब, और एक उसके साथ एक और थी। इसी तरह एक डॉक्टर फजल अली साहब की किताब है कि नबी सल्लम से मोहब्बत की अलामत। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों किताबें पढ़ाई हुई हैं, ऐसी किताबें पढ़ें सुने। फिर नबी सल्लम की बुक राहबर कामिल पढ़ाई, उससे भी आपका कुर्ब महसूस हुआ। फिर नबी सल्लम एज अ मुअल्लिम ये पढ़ाई, उससे भी फील हुआ। तो पढ़ें अल्लाह के नबी के बारे में कोई एक किताब अपने मुताले में रखें, छोटा सा बस उसका एक हिस्सा पढ़ा करें और उसके बाद छोड़ दें, तो आप फील करेंगे कि आपके दिल में गैर महसूस तरीके से मोहब्बत होगी। और खुद पे तारी करें, सोचें अल्लाह के नबी की दरें मैं कब देखूंगी, साहबा कैसे प्यार करते थे, कैसे वो तड़पते थे कि अल्लाह के नबी जन्नत में आपका साथ चाहिए, आपकी झलक चाहिए। वो कहानियां आपने सुनी हुई है ना कि कैसे साहबा उदास हो जाते थे ये सोचकर कि जन्नत में जब आपको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि मोहब्बत करें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मोहब्बत दे। रह गए माँ बाप, ये तबई मोहब्बत है, ये तो होती है, लेकिन अल्लाह के नबी के साथ जो मोहब्बत होगी ये ईमान वाली मोहब्बत होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे अमल की तौफीक दे। मेरा हालांकि कि यहाँ रुक जाते हैं इंशाल्लाह। जो हदीस नंबर 16 है, बेसिकली चैप्टर नंबर 8, हलावत अल ईमान, इससे हम नेक्स्ट नशीस का आगाज करेंगे। جزاك الله خير وحسن الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.